اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پانچواں واقعہ ہے پھوپھی کا عدی بن حاتم کو دربار نبوت میں حاضری کا حکم دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ سرزمین تی میں وارد ہوا. اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی بنا پر عدی بن حاتم تائی, یہ جو تائی تھے نا حاتم تائی, یہ تائی جگہ پہ رہنے کی وجہ سے تھے, جیسے لاہور میں رہنے والے کو لاہوری اور سیالکوٹ میں رہنے والے کو سیالکوٹی کہتے ہیں نا, تو یہ تائی تائی سے ہے. اس علاقے کے کچھ لوگ قیدی بنا کر رسول اللہ کی خدمت میں لائے گئے. انہی میں سے قدی بن حاتم کی پھپھی تھی. اس نے رسول اللہ سے از راہ احسان چھوڑ دینے کی التجا کی. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ سرزمین شام میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی اور اس کو دربار نبوت میں حاضر ہونے کا حکم دیا. بھتیجے نے پھپھی کی بات کو مان لیا. مدینہ طیبہ حاضر ہوا, اللہ کے نبی سے گفتگو کی اور مسلمان ہو گیا. اب اس کی دلیل میں ہم حدیث پڑھتے ہیں. امام احمد نے عدی بن حاتم سے نقل کیا, انہوں نے بیان کیا, کافی طویل واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ, یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے قاصد آئے, اور میں تب اقرب نامی جگہ میں تھا. وہ میری پھپھی اور کچھ لوگوں کو پکڑ کر لے گئے. انہوں نے بیان کیا جب قیدیوں کو رسول اللہ کے پاس لایا گیا تو انہیں ان کے روبرو قطار میں کھڑا کیا گیا. عدی کی پھپھی نے کہا اللہ کے رسول, میری خبر گیری کرنے والا دور جا چکا ہے, اولاد ہلاک ہو چکی ہے, میں بہت بوڑھی ہوں اور میری خدمت کرنے والا کوئی نہیں. آپ مجھ پر مہربانی فرمائیے, اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے گا. آپ نے پوچھا تیری خبر گیری کرنے والا کون ہے؟ اس نے عرض کی عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے. اس نے دوبارہ درخواست کی مجھ پر احسان فرمائیے. اس نے بیان کیا کہ اس کو چھوڑ دینے کا حکم دینے کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو آپ کے پہلو میں موجود شخص نے, جو کہ میرے خیال میں علی رضی اللہ عنہ تھے, کہا کہ آپ سے واپس جانے کے لیے سواری اور زاد راہ بھی طلب کرو. راوی نے بیان کیا کہ اس عورت نے سواری اور زاد راہ طلب کیا تو آپ نے اس کی طلب کو پورا کرنے کا حکم دیا. راوی نے بیان کیا وہ میرے پاس آئیں اور کہنے لگی تو نے میرے ساتھ ایسا برا معاملہ کیا ہے کہ تمہارا باپ ایسا معاملہ نہ کیا کرتا تھا. پھر عدی کی پھپھی نے کہا ان کی خدمت میں کچھ لینے کی غرض سے یا سزا سے بچنے کی خاطر حاضر ہو جاؤ, یعنی بہر صورت ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, فلاں فلاں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر خیر کو پایا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس وقت آپ کے پاس ایک عورت اور بچے یا ایک بچہ تھا, اور عورت اور بچوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق کا ذکر کیا گیا تو میں نے سمجھ لیا کہ آپ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہیں, یعنی کوئی پروٹوکول نہیں تھا, کوئی آپ کے پاس آنے کے لیے ہڈو بچوں والی باتیں نہیں تھیں, کوئی بھی بندہ آپ تک پہنچ سکتا تھا. آپ نے فرمایا عدی بن حاتم تجھے لا الہ الا اللہ کہنے سے کس چیز نے بھگایا؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ تجھے اللہ اکبر کہنے سے کس چیز نے راہ فرار اختیار کرنے پر آمادہ کیا؟ کیا اللہ عز و جل سے بڑی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا. آپ نے فرمایا یقیناً جن پر غضب ہوا وہ یہود ہیں اور بلا شبہ گمراہ نصارہ ہیں. یہ کیا تھے؟ کرسچن تھے نا, تو آپ نے تعریف فرمائی کہ وہ تو غضب والے گمراہ تھے اور اب تم نے راہ پا لی ہے. اب واقعہ تو آسان ہے نا, کوئی اس میں دہرانے کی بات تو نہیں ہے نا. اب اس کے اندر سے جو عمل کی باتیں ان کو دیکھیے گا. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفیق اور مہربان تھے. آپ نے نہ صرف غیر مسلمہ قیدی عورت کو ازراہ احسان چھوڑ دیا بلکہ واپس جانے کی غرض سے سواری اور زاد راہ بھی دینے کا حکم دیا. یہ دیکھیے اخلاق کی بات ہے. یہ جو آج اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تلوار سے اسلام کو پھیلایا, تو یہ واقعہ اس کا رد ہے. تلوار سے نہیں, اخلاق سے اسلام پھیلایا, کھیل وتھ کائنڈنس. اور اگر آج ہم مسلمانوں کا یہ اخلاق ہو جائے جو آپ کا تھا تو بہت سارے لوگ بغیر تبلیغ کے, بغیر لفظوں کے استعمال کیے کے مسلمان ہو سکتے ہیں. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے احسان اور مروت میں کس قدر اثر رکھا ہے. آپ کے احسان اور مروت سے علی بن حاتم کی پھپھی نہ صرف خود شدید متاثر ہوئی بلکہ اسی بنا پر اپنے بھتیجے کو بھی دربار نبوت میں حاضر ہونے پر مجبور کیا. اشاعت اسلام کا جذبہ اور درد رکھنے والے اسی بات کی طرف خصوصی توجہ دیں. زمانے قدیم سے ہی کہا گیا الانسان عبد الاحسان, انسان احسان کا غلام ہے. کیا مطلب؟ کہ جو کسی پر احسان کر دیتا ہے بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے نا. تو آج یقین کریں اگر ہم دوسروں پہ احسان کرنے والے بن جائیں تو واللہ یحب المحسنین, احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تیسری بات کیا پتہ چلی कि रसूलुल्लाह ने फूफी की बात में भतीजे के लिए किस कदर तासीर फरमाई। नबी सल्लम और इस्लाम से नफ़रत के सबब अपने वतन से भागने वाला फूफी की बात के फजल से खुद मदीना तय्यबा में दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। हमारे ज़माने की फूफियाँ भी अपनी हैसियत को पहचाने और नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के लिए इसको इस्तेमाल करें। कौन कौन फूफी आप में से? तो फिर आज भतीजों की शामत नहीं आई, आज उनके किस्मत खुल गई, समझ आए? तो सिर्फ फूफियों को करनी चाहिए ना, सिर्फ फूफियों को कहना चाहिए कि खालाओं को भी। फिर एक और चीज़ इसमें क्या पता चलती है कि अल्लाह के नबी की सादगी और तवाज़ो कादी बिन हातिम पर कितना मुस्बत असर हुआ कि इसकी बिना पर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि आप मुतकब्बिर हुक्मरान नहीं बल्कि पैकरे सिदको सफ़ा हैं। यानी ये भी तो बहुत खूबसूरत बात है ना। फिर पांचवी बात, आपने अदी बिन हातिम को दावत देने की इब्तदा दावत तौहीद से की, क्योंकि दीन की असास और बुनियाद यही है और इसके बगैर सब कुछ बेकार है। यानी साइड इश्यूज छेड़ने की बजाय मेन रूट्स पे जाना चाहिए। जब अल्लाह की मोहब्बत आ गई और तौहीद हो गई और अल्लाह की सिफात और उसके ऊपर गौर व फिक्र आ गया तो फिर बाकी चीज़ें तो खुद ही आसान हो जाती हैं। फिर अगली बात यह है कि लोगों के इस्लाम की खातिर अल्लाह के नबी के सीने मुबारक में किस कदर शदीद तड़प थी। अदी बिन हातिम के दायरे इस्लाम में दाखिल होने पर आपका चेहरा अनवर खुशी और मुसर्रत से खिल गया। तो हमारे भी दिल में ये तड़प और तलब होनी चाहिए। सारे वाक़े का ख़ुलासा क्या था कि एक गैर मुस्लिम जो भाग के गया था वो आपके अखलाक की वजह से आपके करीब आ गया। अगला वाक़ है बच्चे को लोहे की पाजेबें पहनाने पर आयशा रदी अल्लाह अन्हा का एहतसाब। किसी को पहनाई हुई थी और उस दौर में भी लोग पहनते थे तो हज़रत आयशा ने उस पर एतराज़ किया। हज़रत आयशा के यहाँ एक बच्चे को इलाज की गरज से लाया गया जिसको फोड़ा निकला हुआ था। उन्होंने बच्चे का इलाज करने के बाद देखा कि बच्चे के घर वालों ने बीमारी से शिफा याबी की गरज से इसको पाजेबें पहना रखी हैं। हज़रत आयशा ने इस बिना पर इनका शदीद एहतसाब किया। आज भी लोग पहन लेते हैं कोई कड़ा शड़ा तावीज़। आज सुबह हमारी मासी आई तो उसके गले में ब्रांड न्यू तावीज़ था, वो अपने गाँव से होके आई है। तो मैंने कहा ये क्या है? बात जी ये कुछ नहीं है। मैंने कहा कुछ तो है, मुझे तो दिख रहा है। कहती कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हें पता है ये कुछ नहीं कर सकता? कहती हाँ बाजी ठीक है सही कह रहे। मैंने कहा ये शिर्क है? कहती हाँ बाजी लेकिन उतारा कोई नहीं। यानी वो आदत पड़ी हुई है ना। तो वो मैं फिर उससे थोड़ी सी बात करके छेड़ दी है कि मैं अब दोबारा बात करूँगी। लेकिन आप देखिए ना कि एहसास ही कोई नहीं, शिर्क है तो होगा, हमें क्या करना। तो इसने कुछ नहीं पर पहन लेते हैं क्योंकि सब पहनते हैं। तो उस दौर में भी लोग इस तरह के कड़े और इस तरह की पाजेबें पहनाते थे। वो किसी मज़ार से या किसी मंदिर से पढ़ा पढ़ाया किसी का प्रसाद ऐसा होता था कि लोग उसको मुतबरिक समझ के ही पहन लेते थे। तो हज़रत आयशा ने इस पर कैसे रोका, आइए देखते हैं। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने बुकैर से रिवायत नकल की है। इनकी वालदा ने इनसे बयान किया कि उन्होंने बुकैर के भाई मखरमा को हज़रत आयशा के पास भेजा और वो बच्चों के फोड़ों का इलाज किया करती थी। जब आयशा इनके इलाज से फारिग हो चुकी तो उन्होंने बच्चे के पाँव में दो नई पाजेबें देखी। हज़रत आयशा ने फरमाया क्या तुम ये गुमान रखते हो कि ये पाजेबें अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए लिखी हुई मुसीबत को टाल सकती हैं? अगर मैं इनको पहले देख लेती तो मेरे यहाँ इसका इलाज न किया जाता बल्कि इनको छुआ भी ना जाता। यकीनन चांदी की पाजेबें इनसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं। यानी शिर्क का एक मज़हर देख कर हज़रत आयशा ने इजहार नाराज़गी किया। क्या पता चला इस किस्से से? पहली बात यह है कि एक बच्चे के अहले खाना के ख्याल में बच्चे को पाजेबें पहनाने से वो शिफा याब हो जाएगा। हज़रत आयशा ने इनके इस गलत ख्याल पर एहतसाब किया और इस बात में अकीदे की सुथराई और तहारत की हज़रत आयशा की निगाहों में अहमियत रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। यानी हज़रत आयशा ने बेसिकली अकीदे का इज़हार किया। फिर दूसरी बात है, बच्चों को नाजायज़ चीज़ें पहनाना दुरुस्त नहीं है और नाजायज़ चीज़ें पहनाने की सूरत में इनका एहतसाब किया जाएगा। अफसोस है इस बारे में बहुत से दीनदार लोग भी जहालत और गफलत का शिकार हैं। बचपने के उज़र की आड़ में बच्चों और बच्चियों को वो कुछ पहनाया जाता है जिसको शरीयत मुताहरा ने हराम करार दिया। तीसरी बात, बिला शक व शुबह एहतसाब का आम कायदा रसूल यही है कि एहतसाब नरमी और शफकत और प्यार से किया जाए लेकिन बवक्त ज़रूरत सख्त रवि भी इख्तियार की जाएगी। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने फरमाया कि अगर मैं इन पाजेबों को पहले देख लेती तो इस बच्चे का इलाज ना करती बल्कि इनको छूती भी ना। क्या पता चला कि कभी कभी सख्ती करनी पड़ती है। फिर हज़रत आयशा ने लोहे की पाजेबें पहनने से मना करने पर इक्तफा ना किया बल्कि इसकी बजाय चांदी की पाजेबें पहनने की तरफ तवज्जो दिलाई। दावत और एहतसाब में एक बहुत मुफीद और ज़रूरी बात यह है कि नाजायज़ चीज़ बात और अमल से रोकने के साथ साथ जायज़ चीज़ बात और अमल की तरफ रहनुमाई की जाए। इस तरह लोगों के लिए गलत चीज़ों और बातों को छोड़ना निस्बतन आसान हो जाता है। और ये हकीकत में बहुत बड़ी बात है जिसको आप कहते हैं कि अल्टरनेट ज़रूर दें। अगर आप अपने बच्चे को मना करते हैं कार्टून ना देखो तो फिर उसका कोई अल्टरनेट दीजिए। आप कोई भी काम किसी को मना करेंगे ना, पहले उसका अल्टरनेट दे दें, फिर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि छोड़ना आसान हो जाता है। फिर अगला वाक्य है मैमूना का हाइजा के मतलब भांजे की गलत फहमी पर समझाना। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने अपने भांजे अब्दुल्ला बिन अब्बास के बालों को बिखरे हुए देखा तो इसका सबब दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि इनकी कंघी करने वाली औरत बीमारी के दिनों में है। इनका मकसूद यह था कि इन दिनों में चूँकि इसका इन्हें छूना दुरुस्त नहीं, इसलिए वो इनकी कंघी नहीं कर रही। हज़रत मैमूना ने हैज़ के मतलब भांजे की गलत फहमी पर इनका एहतसाब किया। कैसे किया, वाक्य पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुख्तरमा के पास बैठी हुई थी। यानी रावी कह रहे हैं कि इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु इनके पास आए। उन्होंने यानी मैमूना ने दरियाफ्त किया तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं। उन्होंने जवाब दिया मेरी कंघी करने वाली औरत उम्मे अम्मार बीमारी के दिनों में है। उन्होंने फरमाया मेरे छोटे बेटे, देखिए भांजे को कितने प्यार से बुला रही हैं, मेरे छोटे बेटे हैज़ का हाथ से क्या ताल्लुक़ है। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से एक के हाथ तशरीफ़ लाते, वो बीमारी के दिनों में टेक लगाकर बैठी होती, आप इसके साथ टेक लगा लेते और इसी हालत में कुरान करीम की तिलावत फरमाते, और बसा औकात आँख हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और वो बीमारी ही के दिनों में बैठी होती तो आप इनकी गोद में टेक लगा लेते और इसी हालत में कुरान करीम की तिलावत फरमाते और वो बीमारी ही के दिनों में उठती और आपकी नमाज की जगह में आपके लिए कपड़ा बिछाती। इब्ने बकर ने बयान किया कि आप इसी कपड़े में मेरे घर में नमाज अदा फरमाते, ऐ मेरे छोटे बेटे हैज़ का हाथ में क्या असर है। अब देखिए ज़ाहिर एक पर्सनल मैटर को खाला भांजे के सामने खोल रही है, लेकिन हिकमत क्या है इसमें, आइए देखते हैं। पहली बात देखिए कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने अपने भांजे को बालों को सुधारने की तलकीन की। ये तलकीन नबी अकरम की सुन्नत से भी मिलती है। इमाम नसाई ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत नकल की, हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आपने सर के बिखरे हुए बालों वाला एक शख्स देखा तो आपने फरमाया क्या इसको कोई चीज़ मुयस्सर नहीं कि वो इसके साथ अपने बालों को ठीक कर सके। दर हकीकत इस्लाम मुसलमानों के ज़ाहिर व बातिन दोनों की इस्लाह और सुथराई का हुक्म देता है, अगरचि इस्लाह बातिन ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो क्या पता चला कि कंघी करके रहना चाहिए। हदीस में वाज़े तौर पे कि जिसको अल्लाह ने बाल दिए हैं उसको उनकी इज्जत करनी चाहिए, तकरीम करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए बिखरे हुए बालों के साथ क्या एक स्कैटर्ड सी पर्सनैलिटी मिलती है, और आप ख़ुद आजमा के देख लेंगे सिर्फ कंघी करने से इंसान सुधर जाता है। एक तो अपने आप को फ्रेशनेस की फीलिंग आती है और दूसरे को भी समझ आता है, और दूसरों का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए गंदे मंदे फिरते हुए। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी हमें तो होश ही नहीं है, हम तो मसरूफ़ ही बड़े हैं, फलां जो इतना नेक है उसको होश ही नहीं, कपड़ों में बू आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस्लाम इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। दूसरी बात, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने अपने एहतसाब की तायद में सुन्नत मुबारक पेश की। यकीनन बेहतरीन तरीका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है। वखैरुल हज्जी हज्ज मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या पता चला कि जब दूसरों की इस्लाह की कोशिश करें ना तो कोशिश करें कि हदीस के अल्फाज ज़्यादा बोलें, या कुरान की आयत या हदीस के अल्फाज। हमारी अपनी जितनी बातें लंबी चौड़ी होती जाती है ना उतना लोग माइंड करते हैं, जब आप हदीस पढ़ेंगे तो कोई माइंड नहीं करेगा। और यकीन करें इसमें सेफ्टी बहुत है, सिक्योरिटी भी बहुत है कि आप अपने तौर पर वो बात हदीस के सूरत में बयान कर दें, इशारा मिल जाएगा, अगले बंदे के दिल में अल्लाह ताला खुद ही डाल देगा, अगर उसके नसीब में होगा तो वो उससे रुक जाएगा। तीसरी बात क्या है, हज़रत मैमूना ने इख्तसाब शफ़क़त व प्यार और मीठे अंदाज में किया। इनका दो दफ़ा ये कहना ऐ बुनैया ऐ नल हैदा तुमिनल यदी, ऐ मेरे छोटे बेटे हैज़ का हाथ से क्या ताल्लुक है, कहना इस बात पर दलालत गुनाह है। अच्छा आपके दिन में आ रहा होगा कि फिर ये मसले शेयर करने चाहिए। अब देखिए हमारे कल्चर में ना दो एक्सट्रीम्स हैं, एक तरफ तो बिल्कुल खुली बेहयाई है और दूसरी तरफ बिल्कुल ही ऐसी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि जायज़ ना जायज़ चीज़ का फ़र्क भी नहीं बताते, सिर्फ इस डर में कि शर्म आती है। तो यहाँ बात थी इल्म की। हज़रत मैमूना ने एक चीज़ देखी जिससे उनको समझ आ गया कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, उनका बेटा बेटे से मेरा जो भांजा है उसकी हालत देखी और उस पर यह सारी बात करना तरीक़ तालीम था। तो असल में ये जो खालाएँ थी हज़रत मैमूना हज़रत आयशा, ये अपने भांजों की उस्ताद भी थी, उरवा बिन ज़ुबैर जो थे वो भी, उनसे बहुत सारी हदीसें हैं जो हज़रत आयशा से ली हुई हैं, इसी तरह इब्ने अब्बास से ली हुई हैं। तो क्या पता चलता है कि उस दौर में शौक़ कितना था इल्म का, कि अपने ही घर वालों से भी लेने को तैयार है। आज कोई दूसरे का नहीं लेता, अपने घर वाला कोई दे तो क्या कहेंगे, और रहने दें, मजाक में बात टाल देंगे। सीरियस नहीं लेते लोग, क्योंकि वो सोचते हैं कि एक नॉन सीरियस चीज़ है, बस इसका जितना मजाक उड़ा ले उड़ा ले। तो हमारे लिए अमल की बात क्या निकली कि अगर कभी किसी में कोई ऐसी ख़राबी देखी जाए जिसमें हलाल हराम का फ़र्क है, तो अगले को अच्छे तरीके से, अब देखिए ना हैज़ का हाथ से क्या ताल्लुक़ है, इजी बात है। अच्छा, हमारे कल्चर में इस चीज़ को बहुत अहम समझा जाता है, और बहुत ही छुपाना ढकाना, और वेस्ट में तो वो 6 साल 5 साल के बच्चों को सब कुछ दिखाने बताने लगते हैं। तो बीच की बात क्या है, अब देखिए टॉयलेट जाते हैं लोग, दिन में 2-3 दफ़ा जाते हैं ना, नोन है, कोई शर्माता है टॉयलेट का नाम लेकर? शर्माने लिए क्या बात है, बस एक जिस्म से गंदगी आती है वो निकलती। इसी तरह हैज़ और इस तरह की जो चीज़ें ना, इनको भी इजी गोइंग रखना चाहिए, ना बहुत फैलाएं ना बहुत छी छी की करें, और बहुत शर्मा रहे हैं, हंस रहे हैं, छींप रहे हैं, इससे फिर और क्यूरियसिटी आती है, इससे और तजस्सुस पैदा होता है। तो टेक इट ईजी, बस इट्स ओके, जैसे जिस्म की कोई ज़रूरत होती है, ये उसी तरह की चीज़ है। तो यहाँ भी हमें यही अमल दिखता है। फिर इसी तरह से मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का हाइज़ा बीवी से दूरी पर भांजे को डांटना, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना को बतलाया गया कि इनके भांजे इब्ने अब्बास बीवी की बीमारी के दिनों में अपना बिस्तर इनसे जुदा कर लेते हैं, इस पर उन्होंने भांजे का शिद्दत से इख्तसाब किया। दलील क्या है, इमाम अहमद ने उरवा से रिवायत बयान की है, उन्होंने बुदैया से बयान किया, ये लिखते हैं कि मुझे मैमूना बिनते हारिस ने अब्दुल्ला बिन अब्बास की बीवी के यहाँ भेजा, वो इनकी रिश्तेदार थी। मैंने देखा कि इसका बिस्तर यानी इब्ने अब्बास के बिस्तर से अलग थलग गया। मैंने ख्याल किया कि ये दोनों की बाहमी नाराज़गी के सबब है। मेरे दरियाफ्त करने पर इस औरत ने बतलाया, मैं हाइजा हूँ और वो बीमारी के दिनों में मेरे बिस्तर के करीब नहीं आते। वापस पलटने पर मैंने ये बात मैमूना के सामने जिक्र कर दी, उन्होंने मुझे वापस इब्ने अब्बास के पास भेजा कि इनसे कहूँ, क्या तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत से बेरग़बती कर रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी की बीमारी के दिनों में इसके साथ सोते थे, और दोनों के दरमियान सिर्फ़ एक कपड़ा होता था जो घुटनों से तजावुज़ ना करता था, यानी बहुत छोटा होता था। क्या पता चला इस किस्से से, नंबर एक, किसी की गलती की सलाह के इरादे से इसका किसी बड़ी शख्सियत के सामने जिक्र करने में कोई हर्ज नहीं। इब्ने अब्बास की गलती का जिक्र इनकी खाला मोहतरमा हज़रत मैमूना के सामने किया गया, जिन्होंने इसलाह की खातिर मुनासिब कदम उठाया। दूसरी बात है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना ने अपने भांजे के गलत तर्ज अमल पर सब्र ना किया, बल्कि फौरन इनकी इसलाह की कोशिश की, और ख़बर लाने वाली औरत ही के ज़रिए इन्हें अपना इख्तसाबी पैगाम भेजा। तीसरी बात यह कि परहेज़कारी और वरा व तकवा का मियार रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा है, कि अल्लाह ताला इन्हें उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना करार देता है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़िक्रल्लाह कसीरा, कि बेशक अल्लाह के नबी की सूरत में तुम्हारे लिए बेहतरीन उस्वा हसन है, ये उसके लिए जो अल्लाह और यौम आखरत की उम्मीद रखता हो और जिक्र करे बहुत सारा। ये सूरत अहज़ाब की आयत है, आयत नंबर 21। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के तरीक़ों से आगे नहीं बढ़ सकते। फिर चौथी बात यह कि हज़रत मैमूना ने अपने इख्तसाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पेश की, क्योंकि इख्तलाफ़ राय में हरफ़ आखिर तो किताब और सुन्नत ही हैं। कुरान पाक में सूरत निसा की आयत है, फ़ैन तनाज़ात फ़ी शैन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूली इन कुंतुम तूमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला, यानी इसमें भी यही मफहूम है कि हम किस तरह से अल्लाह के नबी के तरीक़ों को अपना सकते हैं। आयत नंबर 59 है ये सूरत निसा की, कि अगर किसी मामले में तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए तो इसे अल्लाह ताला और रसूल की तरफ लौटा दो, अगर तुम अल्लाह ताला और जौम आखरत पर ईमान रखते हो इसी में भलाई है और इंजाम के अतबार से बेहतरीन है। तो ख़ुलासा क्या हुआ इस बात का, कि नबी सल्लम के तरीके से आगे नहीं जाना। पाँचवीं बात क्या है कि हज़रत मैमूना ने भांजे के इख्तसाब में जजर व तौबीख का असलूब इख्तियार किया। बस लोगों का ये समझना कि एहतसाब हमेशा शफकत और नरमी से ही होता है, दुरुस्त नहीं। किताब व सुन्नत की बहुत सारी दलीलें इस बात पर हैं कि ज़रूरत के वक्त एहतसाब में शिद्दत और सख्ती इस्तेमाल की जाएगी। हज़रत मैमूना के एहतसाब में सख्ती शदीद इस बिना पर थी कि इन्हें हज़रत इब्ने अब्बास से इस गलती की तवक्को न थी। तब इसमें एक दो और बातें भी हैं, आम हालात में आप देखिए शौहर और बीवी को साथ सोना चाहिए, ये भी एक चीज़ जहाँ से आपको इनडायरेक्ट दिख रही है कि उनको हैरत हुई। अब ये इतना पर्सनल मैटर क्यों खुला सामने, क्योंकि उन्होंने उनका बिस्तर अलग देखा। और इस चीज़ को यहाँ मेंशन किया गया कि भाई तुम क्यों अलग सो रहे हो, क्योंकि ये तो एक नाराज़गी की अलामत है। तो इससे क्या पता चलता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ रिश्ते बनाए ही ऐसे हैं कि जब उसमें फितरत के मुताबिक इंसान का ताल्लुक होता है तो फिर उसमें खूबसूरती भी होती है, रिलैक्सेशन होती है। बहुत सारे घरों में आज जो बिगाड़ है ना, जाहिर में उसकी वजह नहीं दिखती लेकिन अंदर से इस किस्म की बातें होती हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक फितरी तरीका होता है कुर्ब का। और एक वैसे भी आप देखिए कि इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इंसान का कोई ताल्लुक ही हो, वैसे भी तो एक कुर्बत और मोहब्बत है ना। आप बच्चे को देखे सारा दिन फिर रहा है, माँ के साथ चिपक के सोता है, सोते बच्चे को माँ प्यार करती है, फितरत है। इंसान को हमेशा सोते बच्चे पे प्यार आता है, कुर्बत का एहसास होता है। कुछ लोग हैं वो अपने पेट्स के साथ अपने आप को रखते हैं, तो ये एक कुर्बत है। तो इससे ये पता चलता है कि इस रिश्ते में बिला वजह इस तरह की दूरियां नहीं होनी चाहिए। तो बहरहाल इस वाक्य से एक चीज़ ये भी मिलती है। फिर अगला वाक्य क्या कि हज़रत आयशा के भाई को पूरा वुजू करने का हुक्म देना। हज़रत अब्दुलरहमान बिन अबी बकर अपनी हमशीरा मुख्तरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ आए और वुजू किया। उन्होंने भाई को मुकम्मल वुजू करने का हुक्म दिया। दलील इमाम मुस्लिम ने शद्दाद के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम से रिवायत नकल की। उन्होंने कहा, साद बिन अबी वक्कास की वफ़ात के दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा आयशा के हाँ में आया। अब्दुलरहमान बिन अबी बकर भी वहाँ आए और वज़ू किया। उन्होंने फरमाया, अब्दुलरहमान वज़ू पूरा करो, यकीनन मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है एड़ियों के लिए जहन्नम की आग से हलाकत है। इसको हाईलाइट कर लें, वैलुल लिल आकाबी मिनन्नार। आकाब कहते हैं एड़ियों को, बैक पे होती हैं। वैल जहन्नम या खराबी आग की, यानी जो एड़ियाँ वुज़ू के दौरान खुश्क रह जाती हैं वो जहन्नम में जाएंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हम सबको बचा कर रखे। तो इससे क्या पता चलता है? पहली बात है कि मेज़बानी और मेहमानी के झूठे शैतानी आदाब हक बात की तलकीन में हज़रत आयशा के लिए रुकावट ना बन सकी। दूसरी बात है, हज़रत आयशा ने अपने इख्तसाब की तायद में फरमाने मुस्तफ़ा पेश किया, और ये तायद किस कदर कवी, मजबूत और आला और अफजल है। और असल दलील तो ये कि फरमाने रब्बुल आलमीन हो या सुन्नते हबीबे रब्बुल आलमीन हो। तो यहाँ से क्या पता चला? पहली बात ये भी देखिए कि वुज़ू ठीक करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वुज़ू करते हुए किसी को अगर आप देखें और उसमें कोई कमी बेशी हो तो उसको ज़रूर बताना चाहिए, उसकी इसलाह करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो पूरी आंखें भी नहीं खोलते, वज़ू करते हैं आंखें बंद, वज़ू कर दिया। क्यों? आंखें खोलनी तो नींद उड़ जाएगी। और ये कब होता है? फजर के वज़ू में होता है। हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अमूमन बच्चों में ज़्यादा होती हैं, तो इसकी इसलाह की ज़रूरत है। अगला वाक्य क्या है? दौरान नमाज वज़ू टूटने पर सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का शौहर को हुक्म वज़ू। दौरान नमाज अबू राफे बेवज़ू हुए लेकिन उन्होंने नमाज को जारी रखा। इस पर इनकी बीवी सलमा ने इन्हें नमाज तोड़कर वज़ू करने का हुक्म दिया। इमाम अहमद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा लौंडी सलमा या अबू राफे की बीवी रसूलुल्लाह की खिदमत में अपने शोहर के मारने की शिकायत लेकर हाजिर हुई। हज़रत आयशा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने अबू राफे से पूछा, ए अबू राफे, तुम दोनों का मामला क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये मुझे अज़ियत देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए सलमा, तूने इसको किस चीज़ के साथ अज़ियत दी? इसने अर्ज़ की, मैंने इसको बिल्कुल अज़ियत नहीं दी। असल सूरत हाल ये है कि ये दौरान नमाज बेवज़ू हुए तो मैंने इन्हें कहा है, अबू राफे, यकीनन रसूलुल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब इनमें से किसी की हवा खारिज हो तो वज़ू करे। इस पर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और फरमाया, अबू राफे, इसने तो तुझे अच्छी बात ही का हुक्म दिया। यानी कैसे उनको एहसास दिला रहे हैं कि ये बेचारी तो तुम्हें नेकी की बात कह रही है और तुम उसको मार रहे हो। फ़ायदे की बातें क्या हैं इसमें? नंबर एक, हज़रत सलमा ने शौहर के इख्तसाब में बतौर दलील रसूलुल्लाह का फरमान पेश किया कि हवा खारिज होने पे वज़ू किया जाएगा, तो दलील के साथ बात की। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और हमदर्दी और खैरख्वाही का तज़किरा है कि सलमा की शिकायत को सुना और असल सूरत हल मालूम करने की खातिर शौहर और बीवी दोनों से पूछा। तो इससे भी ये पता चलता है ना कि एक दोनों की बात सुननी चाहिए किसी भी ऐसे मामले के दौरान। फिर अगली बात यह कि शौहर की गलती मालूम होने पर नहायत उमदगी और शफकत से इसको समझाया। तो आप ये छोटे छोटे वाक़यात में ये तो देख ही रहे हैं ना कि ताल्लुकात की हदें क्या हैं। हम एक बिल्कुल ये जो कहते हैं ना, बात ही नहीं करनी किसी के बारे में, नहीं नहीं मेरे शौहर माइंड करते हैं, नहीं मेरी बेगम नाराज़ हो जाएंगी, तो ये फिर कुर्बत नहीं होती। देखिए ना, अच्छा ताल्लुक़ क्या है, कभी आप सुन ले कभी सुना ले, कभी आप बोलें कभी आप दूसरा बोल लें। जज्बात में ना गर्मी होनी चाहिए, और ये रिश्ते इतने कच्चे नहीं होते, ना होने चाहिए कच्ची डोरियों से बंधे कि आपने शौहर का नमाज़ पढ़ लें तो आपसे नाराज़ हो जाए, आपने कहा वजू कर लें तो वो कहती जाओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो यहाँ से आपको इंसानी ताल्लुकात की खूबसूरतियाँ भी दिख रही हैं। अगला वाक्या क्या कि अमरा रजी अल्लाह अन्हा का शौहर को इबादत के लिए जागने का हुक्म देना। हाफिज़ इब्ने जौज़ी इस वाक़े को लेकर आए हैं, कहते हैं यकीनन एक रात एक औरत थी जिनका नाम क्या था, अमरा। अमरा बेदार हुई और इनके शौहर हबीब आजमी सो रहे थे। उन्होंने सहरी के वक्त शौहर को ये कहते हुए बेदार किया, ऐ बंदे उठो, रात बीत चुकी है और दिन आ चुका है, आपको तवील सफ़र तय करना है और ज़्यादा सफ़र थोड़ा है, नेक लोगों के काफ़िले जा चुके हैं और हम पीछे रह चुके हैं। क्या आप अपने शौहर को इन अल्फाज में तहज्जुद के लिए उठाएंगी? कितने मोतियों से जड़े हुए अल्फाज हैं, याद कर लें, उसको किताब खोल के पढ़ दें। किताब खोल तो नहीं सकते, ज़ुबानी कह सकते। देखिए लफ्ज़ों का चुनाव कितना प्यारा है। एक है उठें तहज्जुद पढ़ें, पढ़ते ही नहीं, आप तो मुनाफिक हैं, आप तो हैं ही सुस्त। एक तो ये जो हम उठते कसीदे पढ़ते हैं या फिर अगले को लान तान करते हैं, उससे अगले का मोरल ही डाउन हो जाता है। आप देखिए एक बंदा सोया हुआ है आपकी डांट से उठ रहा है, आप चीख रहे हैं चिंगाड़ रहे हैं और आप उठा रहे हैं, बेकार बात है, कभी भी नहीं उठेगा, बल्कि और ही पीछे हो जाएगा कि जब ये चुप करेंगे तो फिर मैं उठूँगा। तो यहाँ लफ्ज़ बड़े खूबसूरत है, और आप देखिए ना कि उनको एहसास नहीं दिलाया जा रहा कि वो तुम मिस कर दोगे, तुम रह जाओगे। अल्लाह अकबर, ये बात किस कदर पाकीज़ा और उम्दा है, और वो घर किस कदर बासआदत और खुश नसीब है जिसमें ऐसी बात कही और सुनी जाए। ऐ हमारे रब, हमारे घरों में भी ऐसी बातों को जारी कर दे। किस्से पर तालीक, यानी इसका ताल्लुक किस तरह से पेश होता है, इस बात के कहने वाली खातून किस कदर शान और अजमत वाली है। अल्लाह के नबी ने इस औरत के लिए दुआ की जो रात को उठकर इबादत करती है और अपने शौहर को भी इस गरज से बेदार करने की कोशिश करती है। इमाम अहमद, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और हाकिम ने अबू हुरैरा से ये रिवायत नकल की कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम फरमाए जो रात को उठा और नमाज तहज्जुद पढ़ी और अपनी बीवी को बेदार किया, और अगर इसने इनकार किया तो इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अल्लाह ताला इस औरत पर रहम फरमाए जिसने रात को उठकर नमाज तहज्जुद पढ़ी और अपने खामिन को बेदार किया, और अगर इसने इनकार किया तो इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अब ये छींटे मारने से पहले क्या करने की ज़रूरत है? ताल्लुक़ पैदा करने की ज़रूरत है। आप देखिए ना, आप जाके छींटे मार दें आज रात को तो उसके जवाब में तो हाथ ही उठेगा ना, ऐसा नहीं करना। ये बात की बातें होती हैं, ये सारी कॉन्वर्सेशंस पहले की होती हैं, और पहले उनको मौका देंगे, वो आपके ऊपर पानी फेंक चुके हों फिर आप फेंकें। ज़रूरी नहीं कि हर हदीस पे पहले आप ख़ुद ही अमल कर लें, तो लेकिन ये कि यहाँ से आप देखिए कि इतना कॉन्फिडेंस है ना कि वो मेरी इस बात पे बुरा नहीं मानेंगे, तभी तो वो इस तरह से आप उनको पेश कर सकेंगी। तो हमेशा बेतकल्लुफ़ी होनी चाहिए, शौहर बीवी का रिश्ता इंतहाई बेतकल्लुफ़ रिश्ता है, इसमें आप जनाब नहीं चलते, वो फिर एक सूखा रूखा फीका ताल्लुक है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मेजॉरिटी का ताल्लुक बिल्कुल एक ऐसा चल रहा है प्लस माइनस पे, खा लीजिए आ लीजिए बैठ जाइए चले जाइए, ये हो गया वो हो गया, यानी जज्बात की गर्मी नहीं है, नरमी नहीं है, सहूलत नहीं है। और अगर ऐसी हो तो फिर दीन भी मनवाया जा सकता है। और याद रखें, पहले अपनी जगह बनाएं फिर आपकी बात की जगह बनेगी। आप प्यार देना शुरू कर दें, इज़्ज़त देना शुरू करें, मोहब्बत दें, वो आपसे खुद आपकी बात मानेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर अगला वाक्य क्या है, खाने के आने पर भतीजे के इरादे नमाज पर आयशा का एहतसाब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा के भतीजे ने इनके रूबरू गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा लुगवी गलतियाँ की, उन्होंने इसको झाड़ पिलाई यानी डांटा तो वो बहुत गु़स्से में आया। हज़रत आयशा के यहाँ दस्तरखान बिछाया गया तो वो नमाज अदा करने के बहाने वहाँ से उठा। इस पर आयशा ने इसको समझाया कि खाना आ जाने के बाद नमाज शुरू नहीं की जाती। ये लोगों को हदीस बड़ी याद है, पर ये तो नहीं ना कि अजान से ऐन 5 मिनट पहले खाना लगा दिया जाए। कई दफ़ा मैंने ऐसा देखा है बाहर के मुल्कों में भी, लोग बैठे हैं तो बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, 2-2.5 घंटे से असर के बाद लोग आ जाते हैं वहाँ शादियों में, जो ही मगरिब की अजान का वक्त करीब होता है खाना लगता है, और शायद ही कोई एक बंदा उठता होगा जिसको अल्लाह तौफीक दे दे। तो ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है, खाना लगाने से पहले देखना चाहिए कि नमाज शुरू तो नहीं हो रही। हदीस पढ़ते हैं, इमाम मुस्लिम ने इब्ने अबी अतीक से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, क्या कहते हैं, मैंने और कासिम ने आयशा के रूबरू गुफ्तगू की, और कासिम अपनी गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा लुगवी गलतियाँ करता था और इसकी माँ असल में लौंडी थी। आयशा ने इससे फरमाया, तुम मेरे इस भतीजे की तरह गुफ्तगू क्यों नहीं करते, मुझे तुम्हारी असल का खूब इल्म है, इसकी तरबियत इसकी माँ ने और तेरी तरबियत तेरी माँ ने की, रावी बयान करता है कि कासिम इनकी इस बात पर बहुत गज़बनाक और नाराज़ हुआ। जब इसने देखा कि आयशा का दस्तरखान लाया गया है तो वो खड़ा हो गया। उन्होंने पूछा, यानी आयशा ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। उन्होंने फरमाया, बैठ जाओ। इसने कहा, यकीनन मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ। उन्होंने फरमाया, बेवफा बैठ जाओ, बिला शक व शुबा मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना, खाना आ जाने पर नमाज़ नहीं और ना ही ऐसी हालत में जबकि बोलो बराज यानी वॉशरूम यूज़ करने की हाजत इसको तंग कर रही हो, क्योंकि नमाज में डिस्ट्रैक्शन होगी। दोनों में फ़र्क क्या है, आप खुद सोच लें, खाना लगा हुआ है, खुशबू आ रही है और आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? नमाज ही बेरू है। नमाज़ तब पढ़ें जब बिल्कुल पूरे फोकस्ड हो, हजूरी दिल के साथ नमाज़ पढ़ें। सेम थिंग, अगर जिस्म में कोई और हाजत है तो तवज्जो तो उधर चली जाएगी ना, तो नमाज को सोच समझ के पढ़ना चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ इस किस्से से? हज़रत आयशा को लुगवी गलतियों से ज़ुबान की सलामती का शदीद अहतमाम था, यानी वो डिक्शनरी की या लुगत की, स्पीच की गलतियाँ बर्दाश्त नहीं करती थी। दूसरी बात है, भतीजे को गलती पर इसरार से रोकने के लिए आयशा ने झाड़ने और डांट डपट का दर्जा इख्तसाब इस्तेमाल करते हुए फरमाया, ए बेवफा बैठ जाओ। उन्होंने यह इसलूब इसके गलत रवैये की वजह से इख्तियार किया। इमाम नववी, ये नोवी नहीं है बल्कि नववी, इन्होंने सही मुस्लिम की शरह लिखी है, इमाम नववी ने इस सिलसिले में बयान किया है, उन्होंने इसको बेवफा इसलिए कहा क्योंकि वो इस बात का पाबंद था कि इनका एहतराम करता, इनकी बात को बर्दाश्त करता और इस पर गुस्से में ना आता। वो तो सब अहले ईमान की माँ और इनकी फूफी और इनसे बड़ी और इन्हें नसीहत करने वाली और तालीम अदब का एहतमाम करने वाली थी। देखिए हमारा दीन कितना खूबसूरत है ना, एक एक बात का ख्याल रखा जाता है इसमें। फिर अगली बात है, उम्मुल मोमिनीन आयशा ने अपने एहतसाब की ताइद में अल्लाह के नबी की हदीस बयान की, और असल एहतसाब तो वही है जिसकी ताइद अल्लाह रब्बुल आलमीन से हो या फरमाने हबीब से हो। तो वही बात है कि जब लोग ये कहते हैं ना, कहाँ लिखा है, किसने कहा है, तो अगर आपके पास एक सॉलिड रीज़न हो, एक साउंड नॉलेज हो, तो आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि ये बात अल्लाह के नबी ने कही है। अगला वाक्य भी पढ़ते हैं, उम्मे सलमा का कराबत दार को नमाज में फूक मारने से रोकना। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने अपने एक रिश्तेदार को सजदा करने से पहले ज़मीन साफ़ करने की गरज से फूक मारते देखा तो वो इसको ऐसा करने से मना कर दिया। जहन में आ रहा है, कच्ची ज़मीन है, अब झाड़ है, मट्टी है, तो फूक मारेंगे तो वो डस्ट उड़ जाएगी ना, तो सजदा करने में आसानी होगी, तो इन्होंने इसे फिर मना कर दिया। इमाम हाकिम ने वो साले से रिवायत नकल की, उन्होंने बयान किया, मैं उम्मे सलमा के हाँ था और इनका एक करीबी बालों वाला जवान दाखिल हुआ, फिर वो नमाज़ पढ़ने के लिए उठा और दौराने नमाज फूक मार दी। उन्होंने फरमाया, मेरे छोटे बेटे फूक ना मार, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे काले गुलाम को इन्हीं अल्फाज में नसीहत करते हुए सुना, ए रबाह अपने चेहरे को गुबार आलूद कर। ये रबाह कौन थे आपको पता? हज़रत बिलाल, बिलाल बिन रबाह हत्ता, तो ये उनके बाप हो सकते हों। तो क्या पता चला कि फूक नहीं मारनी चाहिए उस वक़्त, बल्कि अगर मट्टी लग जाए मुँह पे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या पता चला इस किस्से से? पहली बात है कि उम्मे सलमा ने इख्तसाब का पहला दर्जा इख्तसाब यानी तारीफ इस्तेमाल किया कि नौजवान को बतलाया कि सजदा करने से पहले फूक मारना दुरुस्त नहीं है। ये दर्जा शरई हुक्म से नावाकिफ़ शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उनको नहीं मसला पता था तो मसला बता दिया। दूसरी बात है कि हज़रत उम्मे सलमा ने शफकत और प्यार से नौजवान का इख्तसाब किया, इनका ए मेरे छोटे बेटे फूक ना मारो कहना इस बात की दलील है। तीसरी बात, उम्मे सलमा ने अपने इख्तसाब की ताईद में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, यानी ये सब में कॉमन थिंग आपको दिख रही है कि ये सारे बात में कुरान और सुन्नत को ही दलील बनाते थे। फिर अगला वाक़िया, हज़रत आयशा का हिजरे अस्वद को छूने की दावत देने वाली औरत का इख्तसाब। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा मर्दों से हटकर अलग थलग तवाफ़ किया करती थी। एक औरत ने आगे बढ़कर हजरे अस्वद को छूने की इन्हें दावत दी तो उन्होंने इसका इख्तसाब किया। बुखारी ने अता से रिवायत नकल की है, उन्होंने फरमाया, क्या कहा? कानत आयशा तो रदी अल्लाह अन्हा ततूफ़ु हजरतम मिनर रिजाली ला तुखालितुहुम। देखिए कितना प्यारा अमल था कि हज़रत आयशा मर्दों से हट कर अलग थलग तवाफ़ किया करती थी। एक औरत ने कहा, चलिए हम भी हिजरे अस्वद को छू दें। उन्होंने फरमाया, तू ही चली जा, और ख़ुद जाने से इनकार कर दिया। आज क्या करती हैं हमारी बहनें? घुसती हैं अंदर, मर्द भी हैं औरतें, वो कहती हैं, नहीं मैंने इतने बुस्से लिए, मैंने इतनी दूर जाके, मैंने इतनी हतीम में नफिल पढ़े, तो मर्दों से लग रही हैं, थक्के खा रही हैं, तो ऐसी इबादत में तो खुशू भी नहीं रहता, तो ये वहाँ जाने से इनकार करती, अलग रहती। और आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सहूलतें हैं, उन्होंने ऊपर भी बना दिया, बरामदे भी हैं, किसी से आप टच नहीं होते। करना तो अल्लाह के लिए, आप ना करें चार तवाफ़ एक कर लें, क्यों आप 7 चक्करों की बजाय 20 चक्कर लगा रहे हैं? थोड़ा करें लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ करें। तो क्या पता चला इससे कि मर्दों के साथ इख्तलात यानी मिक्सिंग से बचने के लिए हज़रत आयशा का अहतमाम बहुत शदीद था, इसलिए मर्दों से अलग थलग हुई और हजरत अस्वद तक को छूना के लिए ना आगे गईं। दूसरी बात है कि हज़रत आयशा ने इख्तसाब में सख्त रवी इस्तेमाल की, छूने के लिए आगे जाने की दावत देने वाली औरत को झाड़ते और डांटते हुए फरमाया तू ही चली जा। क्या पता चला कि ऐसी बातों में उनका ईमान बहुत स्ट्रांग होता था। अगला भी इसी से मुतल्लिक ही है किस्सा। आयशा रदियल्लाहु अन्हा का मर्दों में घुसकर हजरे अस्वद को छूने वाली औरत का इख्तसाब करना, हज़रत आयशा की आज़ाद करदा लौंडी ने इनके रूबरू जिक्र किया, इसने दौरान तवाफ 2 या 3 मरतबा हजरे अस्वद को छुआ, हज़रत आयशा ने मर्दों के दरमियान घुसकर ऐसा करने पर इसको डांटा। दलील इकट्ठी है। इमाम बहकी ने मबजूद बिन नबी सलेमान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की और उन्होंने अपनी वालदा से। अब देखिए ये जो चेन होती है ना, ये भी बड़ी अहम होती है ताकि पता चले कि ये फैब्रिकेटेड वाक़या तो नहीं है। वाक़या क्या है कि वायशा के पास थी और इनकी आज़ाद करदा लौंडी आई, इनसे कहने लगी ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने बैतुल्ला के गिर्द 7 चक्कर लगाए और हजरे अस्वद को 2 या 3 मरतबा छुआ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इससे कहा अल्लाह ताला तुझे सवाब ना दे। देखिए हाईलाइट करें ज़रा। अब आज कोई सिस्टर आए और के मैंने इतने धक्के दिए फिर मैं पहुंच गई हजरे अस्वद के पास और आगे से आप ये कह दें अल्लाह तुम्हें सवाब ना दे तो नाराज़ होंगी ना। लेकिन आयशा ने ये लफ्ज़ बोले अल्लाह ताला तुझे सवाब ना दे, तू मर्दों के साथ धक्कम पेल करती है, तूने अल्लाह अकबर कहकर दूर से गुजरने पर इक्तफा क्यों नहीं किया? कितनी ज़रूरत है आज इस नसीहत की। अगर हम हरम में खड़े होकर सिर्फ यही नसीहत करते रहें तो मुझे लगता है किसी को तो फ़ायदा होगा। और जिस जहालत के साथ औरतें आगे जाती हैं ये हम सब जानते हैं जो वहाँ जाकर देख चुके हैं। फिर इसमें से क्या मिलता है? पहली बात है कि हज़रत आयशा ने अपनी आज़ाद करदा लौंडी का एहतसाब किया और सख्त रवी से किया। दूसरी बात है हज़रत आयशा की निगाह में औरत का मर्दों में घुसना इंतहाई नापसंदीदा था, कबीह काम था, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है पाक ज़मीन है सारी दुनिया से बेहतर है। चाहे हजरे अस्वद को छूने के लिए वहाँ गुनाहों के झड़ने का सबब होता है, इसके बावजूद भी कहा कि मर्दों में ना घुसो। तो इससे पता चलता है कि औरत की लिमिट्स हैं। अब आप और मैं अपने ऊपर लेकर सोचें कितनी ही ऐसी नेकियाँ जिसको करने के दौरान लोग अल्लाह की हदों का ख्याल नहीं रखते। तो खुलासा क्या निकला? हमने 15 वाक़यात पढ़े हैं इसमें, जिसमें से हमने देखा कि बेटे को नसीहत करना, शौहर को नसीहत करना, मंगेतर को नसीहत करना, करीबी रिश्तेदारों को नसीहत करना, इकरमा की बीवी का अपने शौहर को नसीहत करना और वो इस्लाम कबूल कर दे, और इसी तरह से फिर शौहर बीवी का रात को जगाना एक दूसरे को। और बाद में हमने कुछ वाक़यात पढ़े जिसमें हजरे अस्वद और औरतों की लिमिटेशंस की बात हुई। चलिए सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।